गए थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू ही दाता विश्व
मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन से लेकर के अब तक हमने भजन संहिता 1 से लेकर के भजन संहिता 149 का अध्ययन किया है। आज हम भजन 150 देखेंगे जो इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, हमारी विनती है प्रभु जी कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस समय को और हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम भजन संहिता 150 जो भजन का अंतिम अध्याय है उसमें से अध्ययन करेंगे। विषय है गायन मंडली और संगीत वादों के साथ हालेलुया, गान का महान अंतिम प्रदर्शन। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 150 उसके 1-6 पद को पढ़ें। लिखा है, यह की स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं यहाँ पर आराधना क्या है। सबसे पहले हम आराधना के कर्ता पर ध्यान देंगे, इसलिए आवश्यक है कि हम एक प्रश्न, आराधना क्या है, इसका उत्तर दें। इसके लिए हम भजन संहिता 150 उसके 1 पद पर ध्यान देंगे, याह की स्तुति करो, वह आराधना का कर्ता है। जी हाँ, भजन 2 बातों पर बल देते हैं, वह सृजनहार है और वह मुक्तिदाता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और संपूर्ण जगत को बनाया है। जिस अच्छी धूप का आप आनंद लेते हैं वह उसकी है, वह सृजनहार है। आज एक भी ऐसी वस्तु आप नहीं गिना सकते जिसकी रचना उसने न की हो। वह हमारी आराधना के योग्य है क्योंकि वह सृजनहार परमेश्वर है। वह हमारी आराधना के योग्य इसलिए भी है कि वह मुक्तिदाता है। वही एकमात्र सृजनहार और एकमात्र मुक्तिदाता है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में उसके साथ स्पर्धा नहीं है। सृजन के क्षेत्र में और मुक्ति के क्षेत्र में उसका वर्चस्व है। इस कारण वह अपने सब प्राणियों से आराधना की मांग करता है, उनकी स्तुति और गुणगान की मांग करता है। जी हाँ, धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं कहीं नहीं देख पाता कि वह इसके लिए मुझसे क्षमा का आग्रह करता है। उसने हमें उसके ही लिए सृजा है, उसी ही के लिए उसने हमें मुक्ति दिलाई है। मानवीय परिदृश्य में मसीह के साथ विश्वासी का संबंध विवाह द्वारा व्यक्त किया गया है। पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह उसे किसी के साथ बांटता नहीं है, वह उसके लिए जलन रखता है और पत्नी का प्रेम केवल उसी के लिए होना है। अतः धर्मशास्त्र में विश्वासियों को मसीह की दुल्हन कहा गया है। वे केवल उसी के लिए सृजे गए हैं, केवल उसी को हमारी स्तुति प्राप्त करना है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने पर विवश हुआ तो उसने उसे झिड़कते हुए कहा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, ऐसा मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। देखिए, परमेश्वर तो अपने स्वर्गदूतों की उपासना भी नहीं चाहता, वह मरियम की आराधना भी नहीं चाहता है, वह अन्य किसी की नहीं केवल अपने ही उपासना चाहता है। एकमात्र वही है जो आराधना के योग्य है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक प्राणी उसकी स्तुति करेंगे। उसने सब कुछ इसलिए बनाया कि उसकी स्तुति करें। किसे आराधना करना है? यह तो निश्चित है कि परमेश्वर उपासना का विषय है, परंतु प्रश्न यह है कि उपासना किसे करना है। पद 6 में भजनकार कहता है कि जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें। वह मनुष्यों से कहता है कि सब के सब परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, वह उसके साथ सहभागिता करे और मनुष्य उसकी स्तुति करे। मनुष्य के अस्तित्व का अन्य कोई कारण नहीं है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का महिमान्वयन और उसकी संगति का आनंद। परमेश्वर ने जगत की रचना इसलिए की कि वह उसका महिमान्वयन करे। यह जगत आपके और मेरे लिए अस्तित्व में नहीं आया है। जी हाँ, युगों पूर्व अय्यूब ने कहा 38:7 में, जबकि मेरा भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। भजनकार कहता है 96:5 में, देश देश के सब देवता तो मूर्ते हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसने स्वर्ग को इसलिए बनाया कि वे संगीत वाद स्वरूप अनंत काल तक उसकी स्तुति गाएं। यद्यपि मनुष्य उस सर्वोच्च उद्देश्य के निमित्त बनाया गया था, वह परमेश्वर के साथ बने सामंजस्य से हट गया, परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो गया। आज आप और मैं एक सृजित जगत में वास करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करता है, परंतु मनुष्य सामंजस्य में नहीं है, मनुष्य अव्यवस्था में है। परमेश्वर का महान उद्देश्य है कि वह मनुष्य को फिर से स्वर्गिक सामंजस्य में ले आए। मेरे प्रियो, अब हम संगीत के क्षेत्र में आते हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, परंतु मैंने जानकारी ग्रहण की है और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक सुर संगीत में 4 ठहराव होते हैं। मुख्य ठहराव है दियाप्सोन, तब बांसुरी का ठहराव, फिर स्ट्रिंग ठहराव, फिर है मनुष्य की वाणी का ठहराव। मुझे बताया गया है कि मनुष्य की वाणी का जो ठहराव है उसका सुर में होना दुर्लभ ही है। यदि आप उसे एक तापमान पर सुरबद्ध करेंगे तो तापमान में परिवर्तन आते ही वह बेसुरा हो जाता है। मेरे प्रियो, मानवीय वाणी के ठहराव में सुर में रखना अत्यधिक कठिन है। परमेश्वर का यह जगत एक विशाल संगीतवाद है। यीशु ने दियाप्सोन छेड़ा तो सूर्य और चांद सितारे स्तुति गाने लगे। जब उसने बांसुरी का ठहराव खींचा तब चिड़िया स्तुति करने लगी। जब उसने स्ट्रिंग ठहराव छेड़ा तब बिजली ने स्तुति गान किया और स्वर्गदूतों ने स्तुति की। और जब उसने मानवीय वाणी का ठहराव छेड़ा तब वह बेसुरा था। अब यह संगीतकार केवल संगीतकार ही नहीं, मिस्त्री भी है। अतः उसने उस वाद को स्वर्ग में छोड़ दिया और पृथ्वी पर आया। अपना लहू बहाकर उसने मुक्ति द्वारा वह मन फिर से परमेश्वर के सामंजस्य में ले आया। और मेरे मित्रों, आज मुक्ति प्राप्त मनुष्यों को स्तुति करना है, केवल वे जिन्हें मुक्ति मिल गई है, सुर में है। भजन 107 उसके 1-2 में भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। मेरे भाइयों, यदि मुक्ति पाए हुए ऐसा नहीं कहें तो कोई नहीं कहेगा। ओह, स्वर्ग के साथ सामंजस्य में होना। आज पाप इस संसार में आया और मनुष्य को परमेश्वर की गायन मंडली से बाहर ले आया, परंतु मनुष्य मसीह के द्वारा फिर से प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु ने मनुष्य को उसके सृजनहार और तारणहार के साथ मुक्ति के सही संबंधों में प्रवेश करवा दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवाज उठाकर उसकी स्तुति कर सकता है। आइए हम देखेंगे आराधना क्यों करें। यहाँ हम हमारा बल यह की स्तुति करो से यह की स्तुति करो और यह की स्तुति करो से यह की स्तुति करो पर ले आएंगे। हम क्रिया को सक्रिय बनाएंगे कि यह की स्तुति करो। बहुत कम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। सार्वजनिक आराधना जैसी कोई बात नहीं है। क्रिसोस्टम ने कहा, स्वर्गदूत स्तुति गान गाते हैं, मनुष्य सूक्ष्म निरीक्षण करता है, स्वर्गदूत स्तुति गान में आवाज उठाते हैं, मनुष्य वाद विवाद में, वे अपने पंखों में मुंह छिपाते हैं, परंतु मनुष्य निर्लज्जता से तेरी आवर्णित महिमा को देखता है। ओह, आज कितने उपासक वास्तव में आराधना करने के लिए जाते हैं। किसी ने बड़ी ही उपहासजनक बात कही है कि कुछ लोग कपड़े देखने आराधनालय में जाते हैं और कुछ लोग आंखें बंद करने के लिए जाते हैं। मैं सोचता हूं कि कितने लोग परमेश्वर की आराधना करने आराधनालय में उपस्थित होते हैं। आराधना तो आत्मिक नशा है। यदि आपको विश्वास न हो तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में पत्रस के पहले संदेश के आरंभ को पढ़ें। हम उस उपदेश के विषय में पर्याप्त चर्चा करते हैं, परंतु पत्रस यह भी कहता है कि आत्मा से भरे वे प्रेरित मदिरा के नशे में नहीं थे। आज हमें देखकर कितने लोग कह सकते हैं कि हमें ईश्वर भक्ति का नशा है, हमें कलीसियाई उन्माद से पूर्ण होना है। जी हाँ, हमें आज के युग में आध्यात्मिक रोमांस में आगे बढ़ना है, यानी कि उसमें पूर्ण होना है। हमें आराधना में तीन ऐसे शब्द जोड़ देना है जो आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति के मानवीय मन और आत्मा के अनुभव को प्रकट करते हैं। पहला शब्द है दंडवत करना। पूर्व में मनुष्य का अभ्यास था कि मुंह के बल गिरकर आराधना करें। पश्चिमी देशों में सम्मानित आराधना के विषय पर्याप्त चर्चा की जाती है। मुझे गलत न समझे, मैं शारीरिक विन्यास के पक्ष में विवाद नहीं कर रहा हूँ। विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा कि आत्मा अनेक बार अपने घुटनों पर होती है, चाहे शरीर का विन्यास कैसा भी हो। मेरे कहने का अर्थ भी यही है कि हमारी आत्मा को परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरना चाहिए। इब्रानी भाषा के शब्द हैं हिस्ताहबे, अर्थात गर्दन झुकाना, और दूसरा यूनानी भाषा का शब्द प्रोस्क्यूनेओ, अर्थात घुटने टेकना। आज हमें परमेश्वर के समक्ष झुकना है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक हमें स्वर्ग के विषय अधिक जानकारी नहीं देती है, परंतु एक बात तो निश्चित है कि जब भी स्वर्ग में किसी का उल्लेख आता है, वे या तो परमेश्वर की आराधना में अपने चेहरे को झुकाए हुए हैं या आराधना करने समय अपने चेहरे को ढके हुए हैं, चेहरे को उठा नहीं रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको परमेश्वर की आराधना करना मन भावन नहीं है तो आपको स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ सब प्राणी आराधना ही करते रहते हैं। वे अधिकांश आराधना में परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल ही गिरे रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जब मेरा आत्मिक जीवन छोर पर तार तार हो जाए और फटने लगे तो मैं एकांत में परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरना चाहता हूँ और उसके समक्ष अपना मन खोलकर रख देना चाहता हूँ। मित्रों, पिछली बार वह समय कब था जब आप परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरे थे? आपने पिछली बार उसे दंडवत कब किया था? ओह, इससे हमारा भला ही होगा। ऐसा करके हम सुषुप्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, हम अपने कवच से बाहर निकल जाएंगे। इससे हमारे मन में एक अलग ही स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा यदि हम परमेश्वर के समक्ष अपनी आत्मा को दंडवत करवाएंगे। मेरे प्रियो, आराधना का एक और शब्द है सराहना। यह अनुराग से पूर्ण एक शब्द है। इस शब्द में मनोवेग है। भजन संहिता 96:9 में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जी हाँ, आराधना प्रेम की क्रिया है, परमेश्वर से प्रेम निभाना है। दाऊद की पहली पत्नी ने दाऊद की ईश्वर भक्ति को तुच्छ जाना था, जिसे हम दूसरा शामुएल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पाते हैं। दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करके और नरसिंगा फूंकते ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की से झांक कर दाऊद को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। उसने देखा कि दाऊद उससे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेम से रहित आराधना ऐसी ही है जैसे आग की लौ तो हो परंतु उसमें गर्मी ना हो। बिना रंगों का इंद्रधनुष, सुगंध रहित फूल, आराधना स्वेच्छा से होना आवश्यक है, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आराधना में आशा, कोमलता और उत्सुकता होना चाहिए। कुछ आराधनाएं ऐसी हैं जैसे वस्त्र भंडार में जाकर पुतलों को पकड़कर बैठाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं है, जोश नहीं है। ओह, दिल ऐसा ही हो जो परमेश्वर की सराहना और प्रेम से छलकता हो। एक युवक ने अपने लड़की को पत्र लिखा, तेरे लिए सर्वोच्च पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, मैं तेरे लिए समुद्र पार कर लूंगा, रेगिस्तान की जलती रेत पर चल लूंगा, और अंत में टिप्पणी लिखता है, यदि गुरुवार को वर्षा नहीं हुई तो मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। आज की अधिकांश आराधना ऐसी ही होती है। वह हमें परमेश्वर से दूर रखने में अधिक कष्टदायी नहीं है। मेरे प्रियो, विवाह के संस्कार में प्रायः नव दंपति से यह प्रश्न या शब्दोच्चारण करवाया जाता है कि मैं अपनी देह से तेरी आराधना करता हूँ करती हूँ। मेरे मित्रों, ऐसा दिल जो परमेश्वर को सराहने का लालसा रखता हो। डेविड नजियत सेन ने कहा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे सराहता हूँ क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ, मैं श्रद्धा आराधना और सराहना से पूर्ण उसे दंडवत करता हूँ। क्या आपने अपनी आराधना में ऐसी सराहना देखी है? अंत में आराधना में महिमा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर की महिमा, परंतु यह कि हम आराधना में परमेश्वर के उचित स्थान को मान दें। जब आप और मैं परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरते हैं, तब हम वह स्थान लेते हैं जो सृजनहार परमेश्वर के समक्ष हमारा है। मैं परमेश्वर के महिमान्वन की नहीं, मनुष्य के महिमान्वन की बात कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, मनुष्य अपने मरणहार दर्शन शास्त्र के साथ आज अर्ध शताब्दी से मनुष्य को जंगल की ओर ले जा रहा है। घटिया और दास बनाना लज्जा की बात है। मानववाद आपको ऐसा ही बनाता है। हिटलर के जूते चाटने वाले की जीभ काली हो गई थी। उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। मनुष्य परमेश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्य की उपासना करने लगता है। ऐसा एक भी नास्तिक और ज्ञानवादी पुरुष नहीं है जिसने परमेश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्य के जूते चाटकर अपनी जीभ काली न की हो। मनुष्य को सम्मान एवं ऊंचा स्थान प्रदान करने में परमेश्वर की आराधना से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हैरी इमर्सन फॉस्डिक ने 1920 के दशक में एक उपदेश लिखा जिसका शीर्षक था यीशु की आराधना के जोखिम। अपने इस उपदेश में उन्होंने लिखा कि मनुष्य ने प्रभु यीशु से मुक्ति पाने के दो मार्ग खोजे हैं, एक उसे क्रूस पर चढ़ाकर और दूसरा उसकी आराधना करके। मुक्ति विचारवादी नहीं चाहता है कि आप यीशु की आराधना करें। मेरे प्रियो, मैं उसकी आराधना करता हूँ। वह मेरा प्रभु है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उसके समक्ष मुंह के बल गिरकर अपमान को बोध नहीं करता हूँ। प्रभु यीशु को दंडवत करने के तुल्य महिमा और उत्साह कहीं और नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में लिखा है कि दमिश्क के मार्ग में पौलुस मुंह के बल गिरा था और प्रभु यीशु ने वहां उससे बात की और उससे कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। केवल मसीह विश्वास ही है जो मनुष्य को धूल से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:17 में यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, अब कोई भी प्राणी सृजनहार परमेश्वर के समक्ष आ सकता है। जी हाँ, मनुष्य जो पाप से या पाप में घिर गया है, गहराई में चला गया है, ऊंचा उठकर प्रभु यीशु की उपासना कर सकता है। 17वीं शताब्दी का एक महान विद्वान रोगग्रस्त मार्ग में गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे आवारा समझकर लतीनी भाषा में कहा, इस निकम्मे प्राणी पर प्रयोग करके देखो, और वे सोच रहे थे कि वह कुछ नहीं समझा। परंतु मुरेतस ने लतीनी भाषा में कहा, क्या आप उस मनुष्य को निकम्मा कहेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु ने मरने की चिंता नहीं की? मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु और उसकी आराधना ही ने मनुष्य को ऊंचा उठाया है। मनुष्य को अभी अपने यथा स्थान लाया जाना और स्वर्ग के सामंजस्य में बैठाने का काम पूरा नहीं हुआ है। यह महान भजन 150 परमेश्वर पुत्र द्वारा दिया पसोन ठहराव से आरंभ होता है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। इसके बाद बांसुरी का ठहराव है, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, फिर स्ट्रिंग ठहराव है, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अब सुनो मेरे प्रियो, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूंकी, अर्थात उसे प्राण और आत्मा दी, परंतु मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। वह दिन आ रहा है जब प्रत्येक प्राणी यह की स्तुति करेगा। हम आज भी सराहना और स्तुति में अपना मन और जीवन परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। जब मैं पहली बार कलीसिया में अपने सेवकाई में आगे बढ़ रहा था, तब मेरी कलीसिया के एक पदाधिकारी ने मुझे एक संगीत कार्यक्रम में ले जाने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं न तो संगीत इतना समझता हूँ और न ही समझ पाता था, न ही संगीत के बारे में कुछ जानता था, परंतु शिष्टाचार के कारण मैं उसके साथ चला गया। कार्यक्रम के आरंभ होने से पूर्व लगभग 150 संगीतकार मंच पर आए और अपने अपने वाद्य यंत्र को सुरवध करने लगे। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी बुरी आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई फैक्ट्री चल रही है। कुछ समय के बाद वे सब चले गए। शीघ्र ही वे सब मंच पर लौटे और बत्तियां बंद हो गई। अब निर्देशक आया और अभिवादन किया। उसने अपनी छड़ी उठाई और संकेत किया, मेरे मित्रों, आपने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना होगा, संपूर्ण सामंजस्य और राग। मैं इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी राग अलापते ही सुनता हूँ, परंतु एक दिन निर्देशक प्रकट होगा जो प्रभु यीशु है। तब आकाश के छोर से गीत उभर आएगा। प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक स्वर्गदूत और प्रत्येक मनुष्य स्वर्गीय गीत गायन मंडली में होकर के गाएंगे, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। मेरे प्रिय मित्रों, अब जब हम उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आप और मैं उसे दंडवत करके अपने अकिंचन प्राण को स्वर के सामंजस्य में ला सकते हैं, क्योंकि वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसके साथ साथ भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है। अब हम अगले अध्ययन में एक नए पुस्तक के साथ अध्ययन आरंभ करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हाथों को जोड़े।